Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, सरल को कठिन बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कठिन को सरल बनाना उतना ही मुश्किल। लेकिन अगर जो व्यक्ति कठिन को भी सरल बना सकता है, वही व्यक्ति विशेष होता है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं बीके गीता बहन जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू
दीदी। बात करते हैं आज हम एक ऐसे रिश्ते की जो बहुत ही ज़्यादा पाक माना जाता है, वो होता है एक माता पिता और एक बच्चे का रिश्ता। उस रिश्ते में कई सारे लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है तो हमारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं उनके साथ। जैसा हम बिहेव करते हैं वो भी बदलने लगता है। लेकिन ऐसे में अगर आप हमें इस रिश्ते के बारे में कुछ बताइए ऐसा, जिससे हमें पता चले कि ये रिश्ता कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य जब जन्म लेता है
जी,
तो उसे सबसे पहला यही रिश्ता मिलता है, माता पिता की गोद। और इस रिश्ते के साथ ही वो जीवन के हर आयाम को छूने के लिए तैयार होता है। इसीलिए आपने जैसे कहा, ये सबसे पाक रिश्ता है। इस रिश्ते की अहमियत तो वैसी है जैसे किसी भवन की नींव की होती है। जैसे किसी भवन की नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होती है, उतना ही वो भवन मजबूत बनता है। तो ये कहा जा सकता है कि मनुष्य के जीवन में माता पिता का रिश्ता ये एक इतना महत्वपूर्ण रिश्ता है कि जिसमें व्यक्ति का नया जीवन जो प्रारंभ होता है उसका शेप बनता है। और इसलिए इस रिश्ते को हम अधिक से अधिक मजबूत रखें और बहुत अच्छा बनाते चलें। दुनिया में सफल लोगों के जीवन में इन रिश्तों का बड़ा प्रभाव रहा है।
करेक्ट।
इसलिए हमें इस रिश्ते के बारे में अवश्य सोचना चाहिए और हमारे दर्शकों को इसके बारे में हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन पहुंचानी चाहिए।
जी दीदी, वैसे तो आप सही कह रहे हैं कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई बार आजकल की दुनिया में इसकी इम्पोर्टेंस भी कम होती जा रही है। आज पेरेंट्स की जगह दोस्तों ने ले ली है, तो ये किस हद तक सही है?
कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही आपने कही। आज का जो समय है, जिसे हम कह सकते हैं कंज्यूमरिज्म का टाइम
जी,
दुनिया में अधिक से अधिक नई से नई उपभोग की चीज़ें आने लग गई और मनुष्य की अपनी इच्छाएं भी निरंतर बढ़ती चली गई। इच्छाओं के सामने क्षमताएं कहीं ना कहीं लिमिटेड होती है, तो जिंदगी भागदौड़ भरी होने लग गई। हर व्यक्ति व्यस्त रहने लगा।
Correct.
हर व्यक्ति दिखाई देता है जैसे हर समय दौड़ रहा है, और इस दौड़ में कहीं ना कहीं पहली कुर्बानी वो अपने रिश्तों की ही देने लगता है, वो भी अपने निजी रिश्ते, अपने घर के, अपने परिवार के रिश्ते। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो जिस वर्ग, जो कर्म क्षेत्र में रहता है, वहाँ जहाँ अधिक समय बिताता है, वहाँ के रिश्ते तो नए नए बनाता है। जैसे आपने कहा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के साथ स्टडी के दौरान या अन्य समय में वो ज़्यादा समय बिताता है। लेकिन जहाँ तक घर की बात है, तो घर में कभी कभी बच्चे का और पेरेंट्स का एक साथ रहना, वो समय बहुत कम होता चला जाता है। क्योंकि आज के समय में अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होने लग गई है। अक्सर हम सिटीज़ के अंदर देखते हैं कि माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं और ऐसे टाइम पर उनका अलग अलग समय पर घर में अवेलेबल रहना होता है। बच्चे का स्टडी का टाइम अलग होता है, प्लस वो कोचिंग करता है, प्लस वो स्पोर्ट के लिए जाता है, प्लस वो एंजॉय करना चाहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो आपस में माता पिता के साथ में बातचीत, कम्युनिकेशन कम कर पाता है। और तभी कोई ना कोई रिश्ता थोड़ा सा हमें कमजोर दिखाई देता है। हालांकि आवश्यकता आज भी इस रिश्ते की बच्चे को भी उतनी ही है, तो माता पिता को भी उतनी ही है, परंतु कहीं ना कहीं समय का अभाव इसका एक वजह बनी हुई है, और वही समय वो फिर दोस्तों में व्यतीत करता है और वहां से वो उस प्यार को ढूंढता है।
इस बात से मेरे दिमाग में एक बात आई कि प्रायोरिटी भी एक चीज होती है, क्योंकि आपने अभी कहा कि जो समय पेरेंट्स के साथ बिताना चाहिए वो हम दोस्तों के साथ बिताते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से प्रायोरिटाइज करें एज अ पेरेंट, क्योंकि मैं बच्चों को तो कुछ नहीं बोल सकती, वो तो जब आप उनके लिए अवेलेबल हो उनके लिए खुशी की ही बात होगी। तो एज अ पेरेंट आप प्रायोरिटी को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे?
वैसे समय के लिए यही कहा जाता है कि हर व्यक्ति के पास समय होता है, बस उसे प्रायोरिटी देनी होती है कि मैं किस काम को कितना और कब समय दूं।
जी।
तो व्यक्ति थोड़ा सा इम्पोर्टेंस को और अधिक समझना शुरू करें कि अगर मैंने जिंदगी में कुछ धन संपत्ति भी प्राप्त कर ली, उन्हीं बच्चों के लिए मैंने बहुत सी सुविधाएं भी जोड़ ली, मैंने कुछ नाम भी अपना बना लिया, लेकिन अगर इन सबके साथ साथ मेरा प्रिय स्वजन मेरे से कहीं दूर होता गया, या उसे जिस वक्त मेरी ज़रूरत है वो अगर मैंने नहीं दिया, तो ये लॉस जो है वो उस प्राप्ति से कहीं ज़्यादा होगा। अगर पेरेंट्स सबसे पहले इस थिंकिंग को अपने जीवन में लाएं कि क्या इम्पोर्टेंट है जीवन में,
करेक्ट,
सुविधाएं या स्वजनों से नज़दीकी या स्वजनों के बीच प्रेम की अनुभूति, इन दोनों में से हमें विचार करना होगा। हाँ, हम एकदम तो किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ सकते भी नहीं, परंतु थोड़ा सा बैलेंस करें, थोड़ा सा मैनेज करें चीज़ों को। हम वर्क में जाते हैं तो उस अनुसार हम थोड़ी अपनी दिनचर्या सेट करें।
ओके।
हम अर्ली मॉर्निंग से अगर सेटिंग करते हैं तो देखा जाता है कि हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, हम बच्चे के ट्यूशन या बच्चे की स्पोर्ट्स एक्टिविटी आदि का भी टाइम अपनी बुद्धि में लेके चले, और बाकी समय जब बच्चे अवेलेबल है तो हम उनके लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करें।
करेक्ट।
चीज़ों को बदला जा सकता है, आज हमारे सामने चॉइसेस बहुत होती है, सिर्फ हमारा ध्यान पड़ना चाहिए कि मुझे किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स सबसे पहले तो ये थिंकिंग अपने जीवन में लाएं कि मुझे जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये मेरा संसार है, ये मेरे अपने हैं, और इनके लिए मैं अवेलेबल रहूँ, ये शायद मेरी पहली प्रायोरिटी मुझे तय करनी चाहिए।
बिल्कुल दीदी, जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स के अंदर में एक और चीज़ देखा गया है कि जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा भार मैं कह सकती हूँ होता है कि वो जो भी करें वो सोच समझ के करें, क्योंकि जो भी वो करेंगे वो बच्चे देखेंगे और वही सीखेंगे।
right.
तो ये भार किस हद तक जरूरी है, या हम सोचे कि नहीं ठीक है हम तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, बच्चे भी सीख ही लेंगे, जो जा उनको सीखना है वो सीख लेंगे। ये क्या, कौन सी सोच सही है?
देखिए, हमारी संस्कृति ने भी ये कहा है कि बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है।
okay.
और माँ भी न केवल शब्दों से, लेकिन माँ के हर बोल से, उसके हर चर्या से, हर कर्म से बच्चे सीखते हैं।
जी।
पिता के आचरण को बच्चे आदर्श के रूप में बचपन से ही लेते हैं, और बच्ची भी होगी तो उनके मन में भी एक परफेक्ट, अगर किसी पुरुष की कल्पना होती है तो सबसे पहले अपने पिता की होती है।
करें।
ये अक्सर देखा गया है, इसलिए माता पिता को इस जिम्मेदारी का एहसास बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि मैं समझती हूँ इसे भार न समझकर एक उत्तरदायित्व समझे, और एक बहुत अच्छा अपना स्थान समझे कि वो उस स्थान पर है कि जहाँ ऑलरेडी उनको देखकर कई जिंदगियाँ पनप रही है।
करें।
और इसलिए माता पिता को कभी वर्कलोड ज़्यादा होता है, कभी कई प्रकार के टेंशन्स होते हैं, कभी समय का अभाव होता है, कभी हम कहीं थके हुए होते हैं, मानसिक थकान भी होती है, शारीरिक थकान भी होती है, और ऐसे टाइम पर अगर हम छोटी सी बात में भी कभी हम हल्का सा आंसर दे देते हैं, कभी हम थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दिखा देते हैं, जाने अनजाने वो बच्चे इसे भी पार्ट ऑफ लाइफ समझ लेते हैं, पार्ट ऑफ पर्सनालिटी समझ लेते हैं। और इसलिए हमें इन बारीक चीज़ों पर भी ध्यान होना चाहिए कि बिल्कुल जीवन है तो अप एंड डाउन्स तो होंगे, परंतु जब हम पेरेंट है तो हम एक रोल मॉडल भी है। और तब जैसे एक व्यक्ति जब स्टेज पर होता है, जब उसके ऊपर कैमरा फोकस होता है, तो वो थोड़ा सा उस बारे में जागरूक रहता है कि मुझ पर कैमरा है और मुझे ध्यान देना है अपनी एक्टिंग पर। ठीक वैसे ही अगर पेरेंट ये सोचेंगे कि हर समय बच्चे मुझे देख रहे हैं और मुझे उनके लिए आदर्श बनना है, तो शायद वो अपनी इमोशंस और अपने लोड उसके बीच में मैनेज कर पाएंगे।
दिस इज वेरी नाइस। तो एक कैमरा उनके पर फिट है ये सोचेंगे तो उन्हें भी अवेयरनेस रहेगी कि हाँ मेरे बच्चे मुझसे देखकर सीख रहे हैं। जी दीदी, अब बात करते हैं हम बच्चों की। बच्चों के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती है। जब एक नया बच्चा पैदा लेता है तो उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज अपने आप में भरी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी वो गुण कम होने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है?
एक्चुअली हर आत्मा की कोर वैल्यूज होती है, प्लस जिस जिस तरह से आत्मा जन्म लेते लेते इस धरती पर अगले से अगले जन्म में आती है, तो पूर्व के संस्कारों के साथ भी आती है
जी।
तो बहुत से अनुभव युक्त संस्कार उसके पास होते हैं। परंतु जिस नए माहौल में बच्चा बढ़ता है, वहाँ वो दूसरों के आचरण को देखता है, प्लस कुछ लिमिटेशंस को फेस करता है
जी।
प्लस उसको अनेक जिज्ञासा होती है और वो नए वातावरण में उस जिज्ञासा की पूर्ति जब करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉपर आंसर नहीं मिलते हैं।
करेक्ट।
तब वो अपनी वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज करना शुरू कर देता है।
करेक्ट।
तब जो आपने कहा कि वो वैल्यूज जो पहले निर्दोषता है, प्रेम है, ऐसी कई चीज़ें विशिष्टताएं दिखाई देती है, जो बड़ा होते होते हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे रूड हो जाते हैं, कई बार बच्चे शुष्क हो जाते हैं, कई बार बच्चों में वो प्रेम भाव, वो मिलनसारिता, वो कम दिखाई देने लगती है। कहीं ना कहीं वजह यही है कि जो उसकी वैल्यूज़ है उसको सही समय पर प्रोत्साहन न मिलना, वातावरण न मिलना, और उसके कारण वो कंप्रोमाइज करके उसे कहीं ना कहीं छोड़ता चला जाता है।
ओके।
तो तब पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होगा यहाँ पर कि वो समझें कि मेरे बच्चों में विशिष्टताएं कौन सी है, और उस बुद्धिमता को, उस प्रेम को, उस वैल्यूज को वो उभारने की कोशिश करें।
ओके। तो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर में वो वैल्यूज आने लगेगी।
बिल्कुल। okay. उसको एक सपोर्ट मिलेगा, उसको एक चांस मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा।
ओके। दीदी, आजकल एक और प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी हो गई है कि बच्चे और माता पिता ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि शायद ये जनरेशन गैप हो सकता है या क्या है कि आज एक टेबल पे बैठ कर के, अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठ कर हम खाना खा रहे हैं तो अपने आप में एक सब अपने अपने चीज़ों में लगे हैं। शायद बच्चा मोबाइल में बैठा हुआ है, मम्मी अपना खाना परोस रही है, डैडी अपने काम पे फ़ोन कॉल्स पे है, तो एक जो एक शेयरिंग और केयरिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। इसका रीज़न क्या है?
बिल्कुल, ये माहौल वास्तव में सोचनीय भी है और इसके परिणाम आगे चलकर और भी समाज में, हमारे परिवारों में खराब दिख सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज किया है कि ये प्रॉब्लम है और इसको हमें किस तरह से लेना चाहिए। ऐसे दृश्य आज आम होते जा रहे हैं। एक वजह तो जो आपने कहा जनरेशन गैप, वो तो सदियों से रही है। ऐसा नहीं है कि सालों पहले, कुछ हजार साल पहले जनरेशन गैप नहीं होता था,
नहीं।
तब भी होता था, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय हमारी लाइफ में और ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स कम हुआ करते थे
जी।
और इसलिए हम अपने परिवार को अधिक समय देते थे। आज शायद हमारे जीवन में और चीज़ें, बाजारवाद कह दीजिए, कंपटीशन कह दीजिए, कई बार हम टेंशन्स को भी बहुत ज़्यादा फेस करने लगे हैं। आज की हमारी लाइफस्टाइल में इच्छाएं, तृष्णाएं अनेक प्रकार से इस तरह से हावी हो गई है कि हम उसके पीछे टू मच अपनी एनर्जी देने लग गए हैं.
करेक्ट.
और ये जो एनर्जी फ्लो हो जाती है, फिर जब हम अपनों के बीच में होते हैं तब कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत कम शक्ति, बहुत कम उष्मा रह जाती है, और वो जो हम बांटते हैं वो बहुत कम होती है. दूसरी बात ये भी है कि हम एक दूसरे को पहचानने में, समझने में भी थोड़ा सा कम वक्त दे रहे हैं. बच्चा मेरा है तो पेरेंट्स को ये रहता है कि इसे मेरी बात को समझना चाहिए, इसे मेरी इच्छाओं को, मेरी सिचुएशन को समझना चाहिए. परंतु वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चों के साथ और भी बहुत कुछ है जिसमें उसे समझना है, जिसमें उसे अपनी बुद्धि लगानी है.
करेक्ट.
जैसे आजकल स्टडी है, आजकल स्कूल कॉलेज का वातावरण है, उसमें भी जो वो बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चे भी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं.
करेक्ट.
तो उसमें से वो कब समय निकाले कि जब अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को भी समझें, तो वो नहीं समझ पाते हैं और पेरेंट्स भी बच्चों के उस बाहर के माहौल को कम समझ पाते हैं.
Correct.
तो मैं समझती हूँ कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है. अगर हम आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कहीं कहीं आजकल हम देखते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चों को भेजा जाने लगा है, बच्चों को स्पेशल काउंसलिंग कराने भेजा जाने लगा है. हम समझते कहीं ना कहीं मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम सिर्फ एक होती है कि हम उन्हें खुद नहीं समझते हैं.
करेक्ट.
घर का माहौल ऐसा होना चाहिए हर घर का कि जहाँ बच्चा अपनी बात बता सके.
करेक्ट.
कई बार ऐसा होता है कि हम उसे बोलने ही नहीं देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि दो तीन बच्चे होते हैं, उसमें एक बच्चा स्मार्ट होता है, एक बच्चा थोड़ा सा उसके मुकाबले कमजोर होता है. तो उस स्मार्ट बच्चे को तो हम सुन लेते हैं, लेकिन वो जो थोड़ा सा कमजोर है, हालांकि उसको हमें ज्यादा सुनना चाहिए, उसको हम बोलने नहीं देते हैं. हम उसे कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को रोक देते हैं और ऐसा माहौल क्या करता है कि बच्चे को माँ बाप से दूर कर देता है. रहते तो हम एक छत के नीचे हैं, लेकिन मन से, भावनाओं से हम दूर होते चले जाते हैं. बच्चे के मन में ये हो जाता है कि मैं यहाँ अपनी बात शेयर करूँगा तो शायद मुझे कोई सुनेगा नहीं, इसलिए वो नहीं बताना चाहता है. और पेरेंट्स अपनी ही प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा लगे रहते हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है, हम अपनी समस्याओं को खुद सुलझा रहे हैं और आखिरी हम भी तो बच्चों के लिए ही कर रहे हैं.
सही बात है.
तो इस तरह का माहौल बन रहा है. सॉल्यूशन अगर हम कहें तो यही है कि हम थोड़ा सा पीछे लौटें, बचपन के उस भोले भाले मासूम बच्चे के रूप में बच्चे को देखें और वहाँ से हम शुरुआत करें कि प्रभु ने मुझे कितनी सुंदर रचना सौगात के रूप में दी और अब मेरा फर्ज है कि मैं इस रचना को पूरी तरह खिलने दूं, पूरी तरह निखरने दूं. जन्म इसको मैंने दिया है, साथ साथ इसे अच्छा जीवन भी मुझे देना है.
करेक्ट.
तो हम अधिक समय व्यतीत करें, हम अधिक नज़दीक आने की कोशिश करें, बजाय कि हम बाहर साइकोलॉजिस्ट की मदद लें या अन्य काउंसिलर की मदद लेने तक पहुँचे, हम घर के माहौल को थोड़ा लाइट रखें, हर एक की सुने, ये कुछ स्टार्टिंग हम कर सकते हैं.
वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कि एक दूसरे को सुने और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें,
कम्युनिकेशन बढ़ाएं.
जी दीदी, बात कर रहे हैं हम सिंगल पेरेंटिंग की. अभी कई बार ऐसा होता है कि या तो डाइवोर्स्ड है या फिर शायद नहीं है इस दुनिया में, तो ऐसे में सिंगल पेरेंट जो होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा भार होता है.
बिल्कुल.
उन्हें सब कुछ करना है और माता का रोल भी प्ले करना है और पिता का रोल भी प्ले करना है. तो ऐसे सिचुएशन में आपकी क्या सजेशन है ऐसे पेरेंट्स को, हमारे जो जो बच्चों को पूरी तरीके से एक होलसम लाइफ दे सकें?
बिल्कुल, ये एक जीवन में कभी कभी समस्या होती है कि एक सिंगल पेरेंट को बच्चों को बड़ा करना है. देखा जाता है कि जो सिंगल पेरेंट होते हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी तो ज़्यादा होती ही है, लेकिन देखा गया है कि उनको जिम्मेदारी का एहसास भी ज़्यादा होता है.
ओके.
जैसे कहते हैं कि कुदरत में जब कोई एकाध चीज़ हमारे हाथ से छूट जाती है तो कुछ एकाध शक्ति भी हमारे जीवन में बढ़ जाती है. तो मैंने जिन भी सिंगल पेरेंट को देखा है तो वो बच्चे को बड़ा अच्छा टाइम देते हैं, और ये एक अच्छी पॉइंट भी है क्योंकि वो समझते हैं कि मेरा ये आधार भी है और इसका आधार मैं हूँ।
करेक्ट।
तो उनको अपने बच्चे के साथ में फ्रेंडली पेश आना चाहिए।
करेक्ट।
और उसी बच्चे को भी बहुत जल्दी जिम्मेदारी का एहसास इससे आने लगता है।
करेक्ट।
और वो बच्चा कभी ये महसूस नहीं करता है कि मुझे कुछ जीवन में कमी रह गई है, बल्कि वो ये समझने लगता है कि मैं खुद ही अपनी जिम्मेदारियों में और जल्दी तैयार हो रहा हूँ।
करेक्ट।
तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो उनके साथ ये फ्रेंडली व्यवहार एक तो बहुत ज़रूरी होता है, दूसरा हम काम को भी थोड़ा थोड़ा बांटना शुरू करें। कभी कभी मैंने देखा है जो सिंगल लेडी होती है तो वो मल्टीटास्किंग काम करती है और उसे लगता है कि मेरा बच्चा फ्री रहे, वो निश्चिंत होके अपना करियर बनाए, अपनी स्टडी करे, और उस चाह में वो खुद अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही लोड ले लेती है।
करेक्ट।
और उस मल्टीटास्किंग वर्क में वो टू मच बिजी हो जाती है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे काम है, छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, वो हम बच्चे के साथ में बांटना शुरू करें और उसे भी हम छोटे छोटे काम भी सौंपना शुरू करें। उससे ये भी होगा कि लोड नहीं पड़ेगा लेकिन वो अनुभवी होते जाएंगे। ये मेरा एक मानना है।
okay.
कि उससे बच्चा एक्सपीरियंस्ड भी होता जाएगा और जब बच्चा खुद कोई काम करता है तो उसे ये महसूस होता है कि मेरे पेरेंट को ये सब कुछ करने में कितना वक्त और कितनी एनर्जी देनी पड़ती है।
Correct.
तो उसे और अधिक वैल्यू बढ़ जाती है अपने पेरेंट की कि एक सिंगल पेरेंट और इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मैंने कुछ हेल्प किया और उससे वो बच्चा माँ के या पिता के नज़दीक भी आ सकता है। कुछ एक ऐसी चीज़ें हम स्टार्ट करें।
ओके okay. तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उन पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रियलाइज करेंगे कि
ये चीजें भी कितनी
इम्पोर्टेंट है।
यस।
ओके दीदी, अब बात करते हैं हम ऐसे बच्चों की जो बच्चे जिनके शायद माता पिता दोनों ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में शायद वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली आगे तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उनके अंदर में कौन सी ऐसी टिप आप दे सकते हैं जिससे हमें उनकी लाइफ के अंदर में डिफरेंस आने लगे और वो भगवान को अपना माता पिता समझकर आगे बढ़े, या कुछ और कोई ऐसा कोई तरीका जिससे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील कर सके?
बिल्कुल, ये एक जीवन की करुण वास्तविकता है कि जब बचपन में माता पिता का साया बच्चे के सर से उठ जाता है तो ये एक दुर्भाग्य तो है ही, परंतु जिंदगी की हर सिचुएशन को हमें चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ऐसा कभी कभी होता है कि हमें फिज़िकली वो प्यार, वो एहसास जो अन्य बच्चों को मिलता है माता पिता के साथ का, सपोर्ट का, वो शायद कहीं छूट गया हो, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति जो इस धरा पर जन्म लेता है उसका एक स्पेशल पर्पस भी है, और जो ईश्वर सृष्टि नियंता है उन्होंने हमको अगर जीवन दिया है तो उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग भी उनकी है।
करेक्ट।
और उस पर्पस को हमें खोजना है और परमात्मा की उस प्लानिंग को समझने के लिए हम परमात्मा के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट करना प्रारंभ करें। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम थोड़ा समय प्रेयर करें और कुछ एक अच्छे बुक्स को भी रीड करें।
ओके
okay. अच्छे बुक्स की स्टडी एक प्रकार से अच्छा दोस्त की कमी पूरी करती है, अच्छी फैमिली की कमी भी पूरी करती है।
ओके
बजाय कि हम इधर उधर और जगह अपने उस प्यार को खोजें, हम ज्ञान को या अच्छे चिंतन को अपना साथी बनाने की कोशिश करें। और जैसे आपने कहा परमात्मा, वाकई ये जो हमारी संस्कृति हमें कहती है त्वमेव माता श्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु श्च सखा त्वमेव, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है
जी।
लेकिन ये हम सब ने भी अपने जीवन में अनुभव की हुई चीज़ है कि परमात्मा वाकई हम सब के पिता है। और जब हम सूक्ष्म रूप में महसूस करते हैं कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तो मैं एक आत्मा सूक्ष्म रूप में थी और मुझे ये तन, इस जीवन, ये सब मुझे बाद में मिला है, तो तब भी मेरे साथ वो परम शक्ति थी।
करेक्ट।
और उन्होंने ही मुझे ये जीवन दिया है, तो आज भी मैं सोचूं कि ओ परमात्मा आपने मुझे ये जीवन दिया है तो आप मुझे गाइड भी कीजिए आप मेरा साथ भी दीजिए। और कहीं ना कहीं वो महसूस तो आती है कि हमें एक बहुत अच्छी उस समय चिंतन मिलता है, बहुत अच्छी उस समय एक लाइट मिलती है और एक अलग प्रकार की एनर्जी का भी अनुभव हम करते हैं, एक उत्साह का अनुभव हम जीवन में करते हैं। तो ऐसे बच्चे अगर परमात्मा को पहचानते हैं, जैसा कि हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में ब्रह्म कुमारीज में हमने देखा कि जो भी यहाँ आता है, आते ही उसे उस प्यार की अनुभूति होती है कि अरे परमात्मा के साथ मेरा इतना अच्छा क्लोज रिलेशन है और परमात्मा से मुझे ज्ञान भी मिलता है, परमात्मा से मुझे प्रेम भी मिलता है। और जब हम उनके साथ योग भी लगाते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हमें शक्ति भी मिलती है और ये वो शक्ति है जो शक्ति हमसे बहुत महान कार्य कराती है। जैसे हम विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, वो एक बालक के रूप में जब थे तभी उनका परमात्मा से गहरा रिश्ता था। वो बातचीत किया करते थे ईश्वर से और वो उनको पूछा करते थे तुम कहाँ हो और तुम कैसे हो और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। जब बाकी बच्चे अपनी रिसेस में खेलते थे तब भी वो ध्यानमग्न होते थे और ईश्वर से कम्युनिकेट करते थे। तो हम जानते हैं कि उन्होंने छोटी आयु में ही कितने महान कार्य किए और उन्होंने वो महसूस भी किया कि परमात्मा मेरे साथ है, उन्होंने उसके आधार पे गुरु भी प्राप्त किए। तो मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहूँगी कि जीवन में हो सकता है कि रिलेशन फिजिकली आपको मिस हुआ हो, लेकिन फिर भी ईश्वर आपके साथ है ही और इस बात को आप प्रेयर मेडिटेशन इसमें आगे बढ़ के और अधिक महसूस कर सकते हैं।
ठीक है दीदी, आपने आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि किस तरह से अगर हम अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त बना ले तो ऑटोमेटिकली हमें और किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो सबसे परफेक्ट गाइड भी होंगे और सबसे परफेक्ट फ्रेंड भी होंगे। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं माता पिता और बच्चे के रिश्ते की, ये एक बहुत ही पाक रिश्ता है। इसको निभाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। जब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम महसूस करेंगे कि हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, आधी से आधी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन वो हमारे पेरेंट्स ही हमें देंगे। तो याद रखिए, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए और साथ ही साथ उनसे उतना ही प्यार कीजिए जितना आप अपने दोस्तों से करते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।